एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। ये 70 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर सच कहूं तो आज के जमाने के लिए एकदम सटीक लगती है।
हाँ, बिल्कुल।
किताब है अर्नस्ट युंगर की, 1951 में आई थी, द फॉरेस्ट पैसेज। जर्मन में शायद दरवाल्डगंग कहते हैं इसे।
दरवाल्डगंग,
हाँ। और इसकी प्रासंगिकता मतलब आज के दौर में तो कमाल की है। आप देखिए ना, हम हर वक्त कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया का दबाव है, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, सरकारें, कंपनियां, जो हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू पर असर डाल रही हैं।
सही बात है।
तो ऐसे में ये सवाल कि भाई एक इंसान अपनी पहचान कैसे बनाए रखे, अपनी सोच की आज़ादी, अपनी जो अंदरूनी आप कह सकते हैं संप्रभुता, वो कैसे बचाए, ये बहुत गहरा सवाल बन जाता है।
और युंगर की किताब इसी मुश्किल सवाल से जूझती है।
बिल्कुल। और कमाल की बात ये भी है कि ये लिखने वाले अर्नस्ट युंगर वो भी कोई आम इंसान नहीं थे। 1895 में जन्मे, 1998 तक जिए, मतलब पूरी 20वीं सदी देखी उन्होंने।
हाँ, एक बहुत लंबा और कह सकते हैं तूफानी जीवन। वो पहले विश्व युद्ध के सिपाही थे, हीरो थे। उनकी किताब भी है मशहूर, स्टॉर्म ऑफ स्टील।
हाँ, पढ़ी है मैंने।
फिर उन्होंने जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक का गिरना देखा, नाजी दौर देखा, दूसरा विश्व युद्ध, शीत युद्ध की शुरुआत तक।
और नाजी दौर का उनका अनुभव शायद इस किताब के लिए बहुत मायने रखता है, वो आंतरिक पलायन वाली बात।
हाँ, बिल्कुल। इनर एमिग्रेशन, मतलब वो सार्वजनिक जीवन से थोड़ा पीछे हट गए। बाहर से शायद लगे कि सिस्टम का हिस्सा हैं, पर अंदर से अपने विचारों में वो पूरी तरह से आजाद थे। नाजी विचारधारा के आलोचक थे। तो ये जो उनका अनुभव था, एक सैनिक का भी और एक विचारक, एक दार्शनिक का भी, इसने उन्हें व्यक्ति, राज्य और जो टेक्नोलॉजी का रिश्ता है उस पर एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव दिया।
तो ये किताब क्या है फिर? कोई राजनीतिक घोषणा पत्र तो है नहीं, या बस ये कि चलो जंगल भाग चले?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये कोई रोमांटिक ख्याल नहीं है। असल में ये एक तरह की गाइड है कि जब बाहरी दुनिया का दबाव बहुत ज्यादा हो जाए, जब लगे कि भाई विरोध के जो पुराने तरीके थे वो काम नहीं कर रहे, तब भी अपनी आत्मा को, अपनी सोच को, अपनी अंदरूनी आजादी को कैसे जिंदा रखा जाए।
ओके।
तो युंगर का जो मूल तर्क है, मतलब जो सेंट्रल आइडिया है, वो ये है कि असली आजादी और प्रतिरोध वो बाहर लड़ने भिड़ने से नहीं आता।
अच्छा, तो फिर कैसे?
वो आता है एक सचेत, एक कॉन्शियस अंदरूनी कदम उठाने से। इसी को वो कहते हैं वन गमन, द फॉरेस्ट पैसेज।
वन गमन, जंगल जाना।
नहीं, यहीं पर कैच है। ये वन, ये फॉरेस्ट कोई असली पेड़ पौधों वाला जंगल नहीं है।
तो फिर
ये हमारे अंदर की जगह है, मन की, आत्मा की, वो कोना जो बाहरी दबावों से, समाज की उम्मीदों से, सरकार के कंट्रोल से अछूता रह सकता है।
अच्छा, मतलब एक इनर स्पेस।
बिल्कुल, हमारी अपनी जमीन जहां हम पूरी तरह से अपने मालिक हैं, संप्रभु हैं।
युंगर से समझाने के लिए कोई उदाहरण या रूपक इस्तेमाल करते हैं?
हाँ, एक बहुत जबरदस्त रूपक है उनका, तूफान में फंसा जहाज। सोचिए, पूरा मॉडर्न समाज एक बड़े जहाज की तरह है, और ये जहाज एक भयंकर तूफान में फंसा है, विनाश की तरफ बढ़ रहा है।
ठीक है।
अब जहाज पर खड़े होकर आप बहस कर रहे हैं कि कुर्सियां कैसे लगानी है, इस पार्टी को वोट दें या उस पार्टी को। युंगर कहते हैं ये सब बेकार है,
क्योंकि जहाज तो डूब रहा है।
एग्जैक्टली, यही युंगर का पहला बड़ा झटका है। वो कहते हैं हमारी ज्यादातर राजनीतिक बहसें, वो लेफ्ट राइट वाली, वो सब बस जहाज की कुर्सियां ठीक करने जैसी हैं।
सतही है मतलब।
हाँ, असली सवाल सिस्टम के अंदर कौन सही है ये नहीं है। असली सवाल है कि उस पूरे सिस्टम के दबाव से खुद को कैसे बचाया जाए। वो कहते हैं पारंपरिक रास्ते दो ही दिखते हैं, या तो जहाज के साथ डूब जाओ यानी सिस्टम के आगे घुटने टेक दो,
या
समुन्द्र में कूद जाओ, मतलब खुद को खत्म कर लो। लेकिन युंगर कहते हैं रुको, एक तीसरा रास्ता है,
और वो है वन गमन।
हाँ, वो तीसरा रास्ता।
तो ये रास्ता काम कैसे करता है? मतलब ठीक है, पारंपरिक विरोध काम नहीं कर रहा, पर क्यों? युंगर क्या कहते हैं इस बारे में?
युंगर का विश्लेषण ये है कि जो आधुनिक सिस्टम है ना, वो बहुत चालाकी से कंट्रोल करता है। वो सीधे डंडा नहीं मारता हमेशा, वो मनोवैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल करता है, हमारी इच्छाओं को, हमारी जरूरतों को मैनिपुलेट करता है, हमें एक जैसा सोचने, एक जैसा व्यवहार करने के लिए उकसाता है, कन्फॉर्मिटी जिसे कहते हैं।
अच्छा, मतलब अनजाने में ही हम सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं।
हाँ, बिल्कुल। इसे वो एक स्वचालित प्रक्रिया कहते हैं, ऑटोमेटिक। हम बस बहते चले जाते हैं बिना सोचे समझे।
जैसे आजकल होता है ना, कोई ट्रेंड चला, सब उसके पीछे, कोई चीज वायरल हुई, सब वही करने लगे, ये कुछ वैसा ही है?
काफी हद तक वैसा ही। और इसी स्वचालित दुनिया के जवाब में युंगर अपना हीरो लाते हैं, वॉल्डगैंगर।
वॉल्डगैंगर, इसका मतलब
वन में जाने वाला, या कह लीजिए वन विद्रोही।
फॉरेस्ट गौर और फॉरेस्ट रेबल, ये वो इंसान है जो रहता तो समाज में ही है पर अपने अंदर के वन में, अपनी उस आजाद जमीन पर वो टिका रहता है। वो बाहर के नियम मान सकता है पर आंख बंद करके नहीं। उसका आखिरी फैसला उसका अपना जमीर करता है, उसकी अपनी अंतरात्मा।
सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये अंदरूनी आजादी पाना ये मुश्किल क्यों है? युंगर कुछ कारण बताते हैं?
हाँ, वो एक बहुत ही बुनियादी चीज की तरफ इशारा करते हैं, डर।
फियर।
डर? किस चीज का डर?
वैसे तो कई तरह के डर होते हैं, पर युंगर खास तौर पर जोर देते हैं मौत के डर पर।
मौत का डर, ये तो बहुत गहरा मुद्दा है।
हाँ, और शायद थोड़ा असहज करने वाला भी। युंगर का तर्क है कि राज्य हो या कोई भी सिस्टम, वो हमारी चिंताओं का, हमारे डर का इस्तेमाल करता है हमें काबू में रखने के लिए, और मौत का डर तो सबसे बड़ा डर है।
तो इस डर से हमें कंट्रोल किया जाता है।
हाँ, इसी डर के सहारे हमें वो स्वचालित पुर्जा, ऑटोमेटॉन, बनाया जाता है। हम अपनी आजादी खो देते हैं सुरक्षा के बदले में। लेकिन युंगर कहते हैं, और ये बहुत क्रांतिकारी बात है, कि जिस पल इंसान अपने अंदर मौत के डर पर काबू पा लेता है,
हाँ,
उसी पल वो सचमुच आजाद हो जाता है। अत्याचारी की, सिस्टम की शक्ति वहीं टूट जाती है। जिसे मरने का डर नहीं, उसे कंट्रोल कैसे करोगे?
बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी, मौत का डर जीतना। लेकिन क्या इसका मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी कुछ है? ऐसे हमें नौकरी जाने का डर होता है, लोग क्या कहेंगे इसका डर, अकेले रह जाने का डर।
बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। युंगर की बात सिर्फ मौत के परम डर तक सीमित नहीं है। ये छोटे छोटे डर भी हमें वैसे ही बांधते हैं, और शायद इन छोटे डरों का सामना करना, उनसे पार पाना, यही उस बड़ी आजादी की तरफ पहला कदम है।
तो जो इन डरों से ऊपर उठने की कोशिश करता है वही है वॉल्डगैंगर।
हाँ, और ऐसे इंसान में युंगर कहते हैं कुछ प्राथमिक गुण होते हैं, एलिमेंट्री क्वालिटीज।
हाँ,
ये वो गुण हैं जो समाज की सिखाई बातों से पहले से हम में हैं।
जैसे?
जैसे सही गलत की समझ होना, एक मॉरल कंपास, सुंदरता को पहचानना, उसे अप्रिशिएट करना, एक तरह की आध्यात्मिक चेतना होना। ये गुण हमें भीड़ से अलग सोचने और चलने की हिम्मत देते हैं।
और ऐसे वॉल्डगैंगर का प्रतिरोध कैसा होता है? वो क्या करता है? धरने पर बैठता है?
जरूरी नहीं, उसका प्रतिरोध ज्यादातर अंदरूनी होता है, सूक्ष्म। हो सकता है वो बाहरी नियम मान रहा हो पर अपने मन में वो उनकी आलोचना कर रहा हो।
अच्छा।
वो दिखावे के सतही रिश्तों की जगह गहरे सच्चे रिश्ते बनाएगा। वो प्रोपागैंडा को, झूठे दावों को, खोखली भाषा को पहचानेगा और चुपचाप उन्हें खारिज कर देगा।
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेगा?
वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा पर सोच समझ कर।
हाँ?
उसका गुलाम नहीं बनेगा। उसकी असली ताकत कोई बाहरी हथियार नहीं बल्कि उसका अपना चरित्र है, उसकी इंटीग्रिटी।
यहीं पर शायद वो अराजक और अराजकतावादी वाली बात आती है। आपने बताया था कि यंगर इसमें फर्क करते हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। सुनने में शब्द एक जैसे लगते हैं, एनार्क और एनार्किस्ट, पर मतलब जमीन आसमान का है।
क्या फर्क है?
अराजकतावादी, एनार्किस्ट, वो है जो बाहरी सिस्टम को, सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। वो बाहरी व्यवस्था का दुश्मन है, उससे लड़ रहा है।
ठीक है।
और अराजक, एनार्क,
अराजक बाहरी सिस्टम से लड़ने में अपनी ऊर्जा नहीं लगाता। वो अंदर से अपने मन में खुद को हर तरह के बाहरी अधिकारों से मुक्त कर लेता है। उसका कानून उसके अपने अंदर है, उसके जमीर में।
मतलब वो सिस्टम का दुश्मन नहीं है?
नहीं, वो सिस्टम के प्रति उदासीन हो सकता है, वो उसका संप्रभु, समकक्ष है। वो बाहरी नियम मान सकता है पर डर से नहीं, अपनी मर्जी से, जब उसे ठीक लगे। ये एक बहुत शक्तिशाली स्थिति है, बाहर से शांत पर अंदर से पूरी तरह आजाद। तो ये वॉल्डगैंगर या अराजक, ये सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहा बल्कि इसमें एक उम्मीद भी छिपी है।
हाँ, युंगर के लिए ये बहुत जरूरी है। ये लोग सिर्फ प्रतिरोध के प्रतीक नहीं हैं, ये आशा के भी प्रतीक हैं। मुश्किल वक्त में जब चारों तरफ अंधेरा और झूठ फैला हो, तब यही लोग हैं जो इंसानी मूल्यों को, संस्कृति को, सच्ची आजादी के विचार को जिंदा रखते हैं।
जैसे कोई बीज बचाकर रखता है बेहतर मौसम के लिए।
बिल्कुल सही। भविष्य में जब हालात बदलेंगे, जब नए सिरे से कुछ बनाने का मौका आएगा, तो इन्हीं बीजों से नई शुरुआत होगी। ये भविष्य के नवीनीकरण, रिन्यूअल की संभावनाओं को जीवित रखते हैं।
इस पूरी चर्चा से वाकई कई अहम मुद्दे उभर रहे हैं। एक तो साफ है, व्यक्ति की अपनी आजादी बनाम समाज का, समूह का दबाव।
हाँ, ये सेंट्रल टेंशन है।
कैसे आजकल हर चीज हमें एक जैसा बनाने की कोशिश करती है, पढ़ाई में, करियर में, हमारी पसंद नापसंद में भी। भारत में तो ये बहुत महसूस होता है, लोग क्या कहेंगे का डर, सामाजिक उम्मीदें।
हाँ, या फिर ऑनलाइन दुनिया में जो झुंड मानसिकता दिखती है कभी कभी।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा थीम है प्रतिरोध की परिभाषा का बदलना। युंगर कह रहे हैं कि प्रतिरोध हमेशा टकराव या शोर शराबा नहीं होता।
सही कहा। कई बार सबसे असरदार प्रतिरोध चुपचाप होता है, अंदरूनी, अपनी सोच पर टिके रहना, गलत चीजों से मानसिक दूरी बना लेना, वो आंतरिक पलायन वाली बात।
रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये कि हम हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर आंख मूंद कर यकीन न करें या ऑफिस की गॉसिप में शामिल ना हो।
हाँ बिल्कुल, ये छोटे छोटे चुनाव भी प्रतिरोध का हिस्सा हो सकते हैं, अपनी इंटेग्रिटी बनाए रखना।
तीसरा, डर पर काबू पाना। और ये सिर्फ मौत का बड़ा डर नहीं।
नहीं, जैसा हमने कहा, रोजमर्रा के डर भी, फेल होने का डर, मजाक उड़ने का डर, अलग पड़ जाने का डर।
इन डरों को पहचानना और धीरे धीरे उन पर काम करना, ये हमें ज्यादा आजाद बनाता है।
चौथा, वो अंदरूनी वन की ताकत, हमारे मन की वो शांत स्वतंत्र जगह, आज की दुनिया में जहाँ इतना शोर और भागदौड़ है।
हाँ, उस जगह को खोजना और उसे सहेजना बहुत जरूरी लगता है। वो हमें क्लैरिटी देती है, ताकत देती है। कैसे खोजे उसे?
शायद थोड़ा समय निकालकर,
अकेले में,
प्रकृति के साथ, या बस चुपचाप बैठकर अपने विचारों के साथ,
ध्यान करके।
सबके अपने तरीके हो सकते हैं।
और पांचवा थीम, टेक्नोलॉजी। युंगर का नजरिया यहाँ भी बैलेंस्ड लगता है, वो उसे सिर्फ विलेन नहीं मानते।
नहीं, वो उसकी दोहरी प्रकृति, ड्यूअल नेचर को समझते हैं। वो मानते हैं कि टेक्नोलॉजी कंट्रोल का जबरदस्त हथियार बन सकती है। हम देख ही रहे हैं आजकल डेटा प्राइवेसी, सर्वेलेंस की चिंताएं। लेकिन अगर हम सावधान रहें, सचेत रहें, तो यही टेक्नोलॉजी हमें जानकारी दे सकती है, लोगों से जोड़ सकती है, अपनी आवाज उठाने का मंच भी दे सकती है। सवाल फिर वही है, हम इसके मालिक हैं या गुलाम?
युंगर की किताब में यकीनन कई ऐसे विचार हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं, जो याद रह जाते हैं। कुछ को अगर हम दोबारा देखें।
हाँ बिल्कुल, जैसे उनका वो कहना कि असली सवाल ये नहीं कि हम पॉलिटिकली लेफ्ट हैं या राइट,
हाँ,
बल्कि ये कि क्या हम डूबते जहाज से बच सकते हैं, और बचने का रास्ता जहाज पर नहीं, हमारे अंदर है। ये बात हमें सतही बहसों से ऊपर उठकर बुनियादी सवालों पर सोचने को मजबूर करती है।
और वो स्वतंत्रता और मृत्यु वाली बात कि सच्ची आजादी स्पिरिचुअल है, और वो उसी इंसान में बसती है जो उसके लिए मरने को भी तैयार हो, मतलब जिसने मौत का डर जीत लिया।
हाँ, ये स्वतंत्रता को किसी बाहरी चीज से ज्यादा एक अंदरूनी जीत की तरह दिखाता है। बहुत शक्तिशाली विचार है।
और तीसरा, अराजक वाला विचार कि वो कानून को बाहर नहीं अपने अंदर ढूंढता है, वो राज्य का दुश्मन नहीं पर उसका संप्रभु साथी है।
ये हमें सिखाता है कि बाहरी नियमों के साथ जीते हुए भी अपनी अंदरूनी स्वतंत्रता कैसे कायम रखी जा सकती है, एक तरह का संतुलन।
ये सब सुनने में बहुत गहरा और जरूरी लगता है, पर सवाल ये है कि इन विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, खासकर आज के डिजिटल जमाने में।
हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल बहुत अहम है। तो डिजिटल दुनिया में वन गमन कैसा दिख सकता है? शायद इसका मतलब हो सकता है कि हम जानबूझकर कुछ समय स्क्रीन से दूर रहें,
डिटॉक्स करें,
डिजिटल डिटॉक्स। हाँ,
सोशल मीडिया पर जो भी दिख रहा है उसे सच मानने से पहले थोड़ा रुकें, सोचें, वेरीफाई करें।
हाँ,
आलोचनात्मक नजर रखना, मतलब।
बिल्कुल। और ऑनलाइन भीड़ या ट्रोलिंग के दबाव में आकर अपनी सही बात से पीछे ना हटें, अपनी सोच पर कायम रहें, और शायद सबसे जरूरी, इतने सारे ओपिनियन के शोर में अपनी अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करें।
और काम की जगह पर, ऑफिस में,
वहां भी ये सोच काम आ सकती है। अक्सर दबाव होता है ना शॉर्टकट लेने का, सच को थोड़ा गोलमोल करने का, या बस हाँ में हाँ मिलाने का।
हाँ होता है।
तो वॉलगैंगर की तरह सोचना, मतलब अपनी नैतिक सीमाओं को जानना और उन्हें बनाए रखने की कोशिश करना, भले ही वो आसान ना हो या आपको पॉपुलर ना बनाए, अपनी इंटेग्रिटी को बचाना।
और ये आलोचनात्मक चेतना वाली बात, ये तो आजकल सुपर पावर जैसी लगती है।
है ही, चारों तरफ से इतनी जानकारी, इतनी खबरें, इतना प्रोपेगेंडा आ रहा है।
सही कहा।
और युंगर की सीख हमें ये पूछना सिखाती है कि जो दिखाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उसके पीछे किसका क्या मतलब है, किसका फायदा है, क्या ये वाकई सच है, और अपने जजमेंट पर, अपने विवेक पर ज्यादा भरोसा करना।
और आखिर में रिश्तों की बात, युंगर सच्चे गहरे रिश्तों पर जोर देते हैं।
हाँ, सतही मैनजोल के बजाय, आज के जमाने में जहां हजारों ऑनलाइन दोस्त हो सकते हैं, पर इंसान फिर भी अकेला महसूस कर सकता है। वहां कुछ ऐसे भरोसे के रिश्ते बनाना, ऐसे लोग ढूंढना जो आपकी सोच का, आपकी आज़ादी का सम्मान करते हों, ये भी अपने अंदर के वन को सींचने जैसा है, एक सपोर्ट सिस्टम बनाना।
तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटना हो तो मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि असली आज़ादी जो है वो बाहरी हालात पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी हमारी अंदरूनी स्थिति पर। ये ऐसी चीज़ नहीं जो हमें कोई देता है, बल्कि जिसे हमें चुनना पड़ता है, रोज साधना पड़ता है।
बिल्कुल सही कहा। और मेरे लिए यंग का ये विचार कि सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध कई बार खामोश और अंदरूनी होता है, और डर पर काबू पाना ही सच्ची मुक्ति की कुंजी है, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक और शक्तिशाली लगता है। ये याद दिलाता है कि बाहर चाहे जो भी चल रहा हो, हमारे अंदर हमेशा अपनी स्वतंत्रता का एक खिला बनाने की जगह होती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।